नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। दिए गए ISBN Under 5 Forecourt के का व्यापक रूप से संबद्ध शीर्षक Oracle SQL for Dummies है, ना कि अलग शीर्षक वाला Oracle PL SQL for Dummies। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तक का मुख्य लक्ष्य Oracle डेटाबेस में SQL लिखना और समझना है, जबकि PL SQL की प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग इसकी केंद्रीय सीमा नहीं लगती। माइकल रोजनब्लम को ओरेकल विकास और डेटाबेस कार्य का अनुभवी विशेषज्ञ माना जाता है और उनकी व्याख्यात्मक शैली आरंभिक पाठकों के लिए बनाई गई है। पुस्तक डेटाबेस की मूल संरचना से शुरू करके डेटा निकालने, छांटने, जोड़ने, बदलने और व्यवस्थित करने वाली क्वेरी तक व्यावहारिक रास्ता बनाती है। डमीज श्रृंखला के अनुरूप इसका उद्देश्य औपचारिक डेटाबेस सिद्धांत का गहन ग्रंथ बनना नहीं, बल्कि पाठक को ओरेकल के साथ उपयोगी काम करने योग्य बनाना है। इसलिए इसे SQL की बुनियादी भाषा, ओरेकल परिवेश और रोजमर्रा के डेटा कार्यों के बीच एक सुलभ परिचय के रूप में समझना अधिक सटीक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले ओरेकल डेटाबेस की तालिका केंद्रित संरचना को समझना। पुस्तक का पहला उपयोगी आधार यह है कि SQL को केवल आदेशों की सूची की तरह नहीं, बल्कि संबंध पर डेटा के साथ संवाद की भाषा की तरह देखा जाए। ओरेकल डेटाबेस में जानकारी सामान्यतः तालिकाओं में रखी जाती है, जहां पंक्तियां अलग रिकॉर्ड और स्तंभ उनके गुण दर्शाते हैं। इस संरचना को समझे बिना किसी क्वेरी का परिणाम पढ़ना कठिन होता है। पाठक को यह जानना पड़ता है कि किस तालिका में कौन सा तथ्य है, किस स्तंभ का डेटा प्रकार क्या हो सकता है और अलग तालिकाओं के बीच संबंध कैसे बनते हैं। प्राथमिक कुंजी जैसी पहचान संबंधी अवधारणाएं इसी समझ को स्थिर बनाती है। शुरुआती व्यक्ति अक्सर यह मान लेता है कि डेटाबेस साधारण स्प्रेडशीट है, लेकिन संबंध परत डिजाइन में डेटा को अलग इकाइयों में बांटने का उद्देश्य दोहराव और असंगति घटाना होता है। पुस्तक की परिचयात्मक प्रकृति इस अंतर को व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सही तालिका और सही स्तंभ चुनना सही वाक्य रचना से पहले का काम है। यह दृष्टि पाठक को परिणाम आधारित सोच सिखाती है। पहले वह यह स्पष्ट करता है कि कौन सी सूचना चाहिए, फिर उस सूचना तक पहुंचने के लिए SQL कथन बनाता है। आगे की चयन, जोड़ और संशोधन संबंधी तकनीकें इसी तालिका केंद्रित समझ पर निर्भर करती है। दूसरा, सेलेक्ट क्वेरी द्वारा डेटा खोजना, छांटना और सीमित करना। SQL सीखने का केंद्र सेलेक्ट कथन है, क्योंकि अधिकांश व्यावसायिक डेटा कार्य पहले जानकारी देखने और जांचने से शुरू होते हैं। पुस्तक की विषय वस्तु के अनुरूप पाठक को किसी तालिका से आवश्यक स्तंभ चुनना, पूरी तालिका के बजाय प्रासंगिक रिकॉर्ड तक परिणाम सीमित करना और आउटपुट को अर्थपूर्ण क्रम में रखना सीखना चाहिए। वेयर शब्द इस प्रक्रिया का निर्णायक भाग है। यह डेटाबेस को बताती है कि किन पंक्तियों को शामिल करना है, जैसे किसी तिथि, सीमा, श्रेणी, संख्या या पाठमान से मेल खाने वाले रिकॉर्ड। ऑर्डर बाय परिणाम को पढ़ने योग्य क्रम देता है, जो रिपोर्टिंग और सत्यापन में उपयोगी है। यहां केवल वाक्य रचना याद करना पर्याप्त नहीं है, शर्तों का तर्क समझना आवश्यक है, क्योंकि और या नहीं तथा रिक्त मान जैसी स्थितियां अपेक्षित परिणाम को बदल सकती है। रिक्त मान विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वह साधारण पाठ या संख्या जैसा मान नहीं होता। इस स्तर पर पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता स्पष्ट होती है। पाठक बड़े डेटा संग्रह से वही सूचना निकालना सीखता है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। यह कौशल बाद में रिपोर्ट, विश्लेषण, प्रशासनिक जांच और अनुप्रयोग विकास सभी में सीधे काम आता है। तीसरा, जॉइन के माध्यम से अलग तालिकाओं की जानकारी को जोड़ना संबंध पर डेटाबेस की वास्तविक शक्ति तब सामने आती है जब उपयोगी जानकारी एक ही तालिका में नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी इकाई का विवरण एक तालिका में और उसके लेनदेन दूसरी तालिका में रखा जा सकता है। जॉइन ऐसी तालिकाओं को उनके साझा स्तंभों के आधार पर जोड़कर एक संयुक्त परिणाम देता है। यह विषय आरंभिक पाठकों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि जॉइन में सही संबंध चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही SQL लिखना। यदि जोड़ की शर्त गलत हो तो परिणाम में अनावश्यक दोहराव, छूटी हुई पंक्तियां या भ्रामक संयोजन आ सकते हैं। पुस्तक के स्तर पर जॉइन को समझने का मुख्य बिंदु यह है कि तालिकाएं अलग होने पर भी डेटा का अर्थ उनके संबंधों में निहित होता है। आंतरिक जॉइन मिलान वाली पंक्तियों पर ध्यान देता है, जबकि बाहरी जॉइन उन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है जहां किसी एक पक्ष का मिलान उपलब्ध नहीं है। इन भेदों का व्यावहारिक अर्थ रिपोर्टिंग में बहुत स्पष्ट है। केवल सक्रिय लेन देन देखने हैं या ऐसे रिकॉर्ड भी दिखाने हैं जिनके साथ कोई लेन देन नहीं है, यह निर्णय जॉइन के प्रकार को प्रभावित करता है। इसीलिए यह विषय डेटाबेस डिजाइन, डेटा गुणवत्ता और व्यावसायिक प्रश्न तीनों को एक साथ जोड़ता है। चौथा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से डेटा बदलने की जिम्मेदारी, डेटा प्राप्त करना अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन उसे बदलना अधिक जिम्मेदारी मांगता है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कथन क्रमशः नए रिकॉर्ड जोड़ते हैं, मौजूदा रिकॉर्ड में परिवर्तन करते हैं और रिकॉर्ड हटाते हैं। पुस्तक की आरंभिक प्रकृति में इन कथनों का महत्व इसलिए है कि पाठक डेटाबेस को केवल पढ़ने की प्रणाली नहीं बल्कि नियंत्रित रूप से बदलने योग्य प्रणाली समझे। फिर भी इन आदेशों के साथ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि परिवर्तन से पहले लक्ष्य पंक्तियों की पहचान स्पष्ट हो। विशेषकर अपडेट और डिलीट में वेयर शर्त का अभाव पूरी तालिका को प्रभावित कर सकता है, इसलिए चयन क्वेरी से पहले परिणाम जांचना और फिर संशोधन करना व्यावहारिक अनुशासन है। डेटा प्रकार, अनिवार्य स्तंभ, अद्वितीय पहचान और तालिकाओं के संबंध भी यह निर्धारित करते हैं कि कोई बदलाव वैध होगा या नहीं। लेन देन की अवधारणा इसी संदर्भ में उपयोगी है। यह समझाती है कि कई बदलावों को कब स्थायी किया जाए और गलती मिलने पर उन्हें कब वापस लिया जा सके। ऐसे विषय पाठक को केवल आदेश चलाना नहीं बल्कि डेटा की विश्वसनीयता बचाना सिखाते हैं। शुरुआती SQL सामग्री में यह जिम्मेदार दृष्टिकोण विशेष उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक प्रणालियों में गलत डेटा परिवर्तन का प्रभाव क्वेरी त्रुटि से कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। अंत में सारांश, समूह और डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ उपयोगी रिपोर्ट बनाना, रोजमर्रा की डेटाबेस जरूरतें अक्सर अलग रिकॉर्ड पढ़ने से आगे जाती है। उपयोगकर्ता को कुल संख्या, औसत, न्यूनतम, अधिकतम या किसी श्रेणी के अनुसार सारांश चाहिए होता है। एग्रीगेट फलन और ग्रुप बाय इस प्रकार के प्रश्नों का आधार है। इनके माध्यम से कच्चे लेन देन डेटा को निर्णय के लिए उपयोगी संक्षिप्त सूचना में बदला जा सकता है, लेकिन समूह आधारित क्वेरी में चुने गए स्तंभ और समूह निर्धारण का संबंध स्पष्ट होना चाहिए, वरना परिणाम का अर्थ अस्पष्ट हो सकता है। हैविंग जैसी शर्तें समूह बनने के बाद परिणाम सीमित करने का विचार देती है, जो साधारण पंक्ति स्तर की वेयर शर्त से अलग है। ऑरेकल के संदर्भ में व्यू जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी महत्वपूर्ण है। व्यू किसी उपयोगी क्वेरी को पुनः प्रयोग योग्य रूप दे सकता है और जटिल तालिका संरचना को उपभोक्ता से कुछ हद तक छिपा सकता है। इंडेक्स और अन्य ऑब्जेक्ट का उल्लेख पाठक को यह संकेत देता है कि डेटा पहुंच और प्रदर्शन भी डेटाबेस कार्य का हिस्सा है। भले यह पुस्तक उन्नत ट्यूनिंग का ग्रंथ नहीं है, इस विषय का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि SQL केवल रिकॉर्ड खोजने की भाषा नहीं बल्कि विश्वसनीय है, दोहराए जा सकने वाले सारांश और रिपोर्ट तैयार करने का माध्यम भी है। निष्कर्ष में दिए गए ISBN के आधार पर यह पुस्तक उन विद्यार्थियों, नए डेटाबेस उपयोगकर्ताओं, रिपोर्ट बनाने वाले व्यावसायिक विश्लेषकों और आरंभिक ओरेकल डेवलपरों के लिए सबसे उपयुक्त है, जिन्हें ओरेकल SQL का व्यवस्थित प्रवेश चाहिए। जिन पाठकों का लक्ष्य केवल डेटा देखना, फिल्टर करना, अनेक तालिकाओं को जोड़ना, सारांश बनाना और नियंत्रित बदलाव करना है, उन्हें इसका व्यावहारिक ढांचा उपयोगी लगेगा। इसका लाभ इस बात में है कि यह SQL को अलग अलग आदेशों के संग्रह के रूप में रखने के बजाय डेटा प्रश्नों से जोड़ता है। कौन सी तालिका चाहिए, किन रिकॉर्ड की जरूरत है, तालिकाएं किस आधार पर मिलेंगी और बदलाव का जोखिम क्या है, ऐसे प्रश्न वास्तविक काम में अधिक महत्व रखते हैं। डमीज शैली इसे अत्यधिक औपचारिक संदर्भ पुस्तकों से अलग बनाती है। जटिल शब्दावली और गहरे प्रशासनिक विवरणों से शुरू करने के बजाय यह कार्य आधारित सीखने की दिशा देती है। हालांकि जो पाठक उन्नत PL SQL प्रोग्रामिंग, पैकेज, ट्रिगर, अपवाद प्रबंधन, प्रदर्शन ट्यूनिंग या डेटाबेस प्रशासन सीखना चाहते हैं, उन्हें इसके बाद अधिक विशिष्ट सामग्री चाहिए होगी। विशेष रूप से शीर्षक संबंधी भ्रम से बचना चाहिए, क्योंकि यह ISBN मुख्यतः ओरेकल SQL परिचय से जुड़ा है। सही अपेक्षा के साथ पढ़ी जाए तो पुस्तक ओरेकल डेटा के साथ आत्मविश्वासपूर्ण और सावधान काम करने की ठोस शुरुआती नींव देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल रोजनब्लूम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।